नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अरविंद केजरीवाल जी जो थे वो बड़े ठसके से कल सुप्रीम कोर्ट गए थे। रात में दो दो बार रजिस्ट्री के आगे पीछे घूमते रहे, ये कहा कि अभी रात में सुनवाई की जाए, लेकिन साहब कुछ नहीं हुआ। टके सा जवाब मिला, कहा कि साहब इन्फॉर्म कर दिया गया है चीफ जस्टिस को और सवेरे सुनवाई होगी। आज सवेरे 10:30 बजे मेंशनिंग होती है जो सुप्रीम कोर्ट में, उस मेंशनिंग में अभिषेक मनु सिंघवी, आजकल उनके भी सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं, ना कपिल सिब्बल के ठीक चल रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां जाकर मेंशन किया कि साहब की ये है, ऐसा अर्जेंट मैटर है, हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको तुरंत सुनवाई इसके ऊपर चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपको हम तुरंत सुनवाई दे देते हैं। ये जो है ये बेंच नंबर आपके कोर्ट नंबर 2 में स्पेशल बेंच में हम इसको भेज देते हैं। फिर जाकर स्पेशल बेंच में गए तो वहाँ रेगुलर बेंच चल रही थी। उन्होंने कहा भाई स्पेशल बेंच का मामला है, स्पेशल बेंच जो है वो ईडी के केसेस सुन रही है, ईडी के जमानत वाले केसेस जो है वो सब स्पेशल बेंच में जा रहे हैं। और आप स्पेशल बेंच में उससे पहले इनकी सुनवाई होती, भाई साहब की इनकी सुनवाई होने से पहले वहां पर सुनवाई हो रही थी के कविता की। आपको पता है के कविता जो है उसी केस में, इसी पीएमएलए केस में, इसी लिकर स्कैम में आरोपी हैं, और उनके कारण ही, उनके द्वारा जो 100 करोड़ रुपए दिए गए, जिसको जो है वो कांग्रेस वाले पहले बताते थे कि वो हवाला के माध्यम से गोवा इलेक्शन में उनका उपयोग हुआ, उसी 100 करोड़ की आरोपी की कविता की जमानत की अर्जी रिजेक्ट कर दी गई। और ये कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं, यहाँ आप रिट में क्यों आए, आप क्या ट्रायल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो समाप्त कर देना चाहते हैं, आपके पास अवसर है, आप ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं गए। जी हाँ, ट्रायल कोर्ट में बड़े लोग जो है ना वो ट्रायल कोर्ट में नहीं जाते, उनके पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसों को 10 लाख रुपए पर हियरिंग देने का खूब पैसा होता है। 10 लाख रुपए पर हियरिंग लेते हैं ये बड़े बड़े वकील, कुछ तो 20-20 लेते हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जितने बड़े बड़े घोटालेबाज हैं इस देश के, उन सबके वकील हैं ये, और उन सबसे 20-20, 25-25 लाख पर हियरिंग तक ले लेते हैं, 10 लाख तो नॉर्मल है। सोचिए कोई छोटा आदमी सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच भी नहीं सकता। इस तरह के जब लोग जो हैं वहां पर बैठे हुए अपनी दुकान चला रहे हैं तब तो भाई के कविता का मामला जाते ही खत्म होते ही ईडी ने सबसे पहले वहां पर कैवियट लगा दी। कैवियट क्या होता है आप लोगों को बता दूं, कैवियट जो है वो एक एप्लीकेशन होती है किसी भी मैटर में, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी और कोर्ट के भी सामने होता है, उसमें एक ये एप्लीकेशन होती है कि हम भी इसमें पक्षकार हैं, हमें सुने बगैर इसका फैसला ना किया जाए। ऐसे में कोर्ट के लिए आवश्यक हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने कैवियट लगाई है उसको सुना जाए। तो ईडी ने उसमें लगा दी कैवियट। अब ईडी के कैवियट लगाने के बाद में के कविता का केस हुआ। बेंच, स्पेशल बेंच कौन, स्पेशल बेंच वही बेंच चली आ रही है लगातार, कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस संजीव खन्ना जो नंबर 2 है, जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले, यानी कि हमारे जब धनंजय चंद्रचूड़ जी जब रिटायर होंगे तब उनके स्थान पर बनेंगे संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, तो वो कोर्ट नंबर 2, और उनके साथ में एमएम सुंदरेश और बेला त्रिवेदी जी। बेला त्रिवेदी जी के लिए मैं बता दूं आपको, बेला त्रिवेदी जी हमारे राजस्थान में लंबे समय तक यहाँ पर वो हाईकोर्ट में जज रही है, और उनकी योग्यता और कानून पर उनकी पकड़ का सब लोग यहाँ पर एक तरह से कहते हैं कि लोहा मानते थे, और ये कहते थे कि भाई पहली बार ऐसा देखा है कि जो लोअर जुडिशरी से आई हुई कोई जज जो है वो इतनी जबरदस्त कानून पे पकड़ रखती है, चाहे वो क्रिमिनल साइड हो या सिविल साइड हो या रिट साइड हो, हर एक में। तो बेला त्रिवेदी जी कानून से इधर उधर बिल्कुल नहीं हटती, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता कि भैया तुम चीफ मिनिस्टर हो या कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो या कि तुम एक्स हो या तुम वाई हो, कितने बड़े हो, कुछ हो, कानून क्या कहता है उसी के हिसाब से चलती हैं। और संजीव खन्ना जी भी जो हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं। इसी बेंच ने इन्हीं तीन जजेस की बेंच ने हेमंत सोरेन का मामला भी बेल के मामले में रिजेक्ट किया था। कहा था हाईकोर्ट जाओ भाई, यहां क्यों आ गए सीधे। इन लोगों की आदत हो गई अपनी पावर दिखाने के लिए, यानी कि पहले तो करप्शन करेंगे, करप्शन करने के बाद में फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। आप केजरीवाल को ले लीजिए ना भाई, नवा संबंध था ये, और नवे संबंध के मामले में फिर उठ के चले गए कहां, हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट के जज ने पहले बिल्कुल देखिए, पहले हाईकोर्ट के जज जो थे वो थोड़ा सा ये क्या है आप लोग जो है इस तरह से गिरफ्तार करने के लिए क्यों कर रहे हैं, आप गिरफ्तार करेंगे क्या। फिर कहा कि भाई अच्छा ऐसा है, होगा हमारे पास है मटेरियल गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन हम कोई जरूरी नहीं है कि इसको गिरफ्तार करें। तो अच्छा क्या मटेरियल है आपके पास, सब हम तो देखिए ओपन कोर्ट में तो नहीं दिखा सकते, आप चाहें तो आपको चेंबर में दिखा सकते। ठीक है ले गया, लेके आइए। चेंबर में दिखाया गया कल उनको, चेंबर में देखते ही कोर्ट तो पूरी तरह से पलटी मार गया। समझ लीजिए कि किस प्रकार के उसमें सबूत रहे होंगे कि कोर्ट जो है जब वापस आया, जब कोर्ट दोबारा बैठा तो उसका रुख पूरा बदला ही हुआ था, पूरा बदला हुआ था। यहीं पर यही एक ऐसा बिंदु रहा जहां पर केजरीवाल मार खा गए। अगर वो समन में चले जाते ना तो कोई जरूरी नहीं कि उनको गिरफ्तार किया जाता, लेकिन ये जो उन्होंने डिफाइंस अपनी बना रखी थी, और ये क्यों बना रखी थी ये आज हम आपको बताएंगे। 7:30 बजे का जो हमारा शो है उसको हम बताएंगे कि किस तरह से डीप स्टेट के साथ में, ग्लोबल डीप स्टेट के साथ में मिलकर केजरीवाल क्या गुल खिलाने जा रहे थे। आज आदि अचिंत के साथ में हमारा शो कतई मिस न कीजिएगा, और रात के 10 बजे विजय सरदाना जी के साथ में जो शो है वो भी कतई मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पहला शो जो है वो डीप स्टेट के साथ क्या हो रहा था और दूसरा शो जो है वो पॉलिटिकल और लीगल एंगल पे होगा। अब समस्या तो जो है वो बढ़ती जा रही। वहां पहुंच के अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि साहब हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये जो है हमारी रिमांड एप्लीकेशन के साथ में क्लैश कर रहा है, क्योंकि आज ये रिमांड की हियरिंग होने जा रही है उसके साथ में क्लैश कर रहा है, तो हम ये आपसे लिबर्टी चाहते हैं कि साहब की है आप हमें बाद में आने की इजाजत दे दें। आप यार यू आर फ्री वेन एवर यू वॉन्ट टू कम। लेकिन सबको पता है कि मैटर इस स्पेशल बेंच में जाएगा तो स्पेशल बेंच जो अपने पुराने निर्णय से बाध्य है, पुराने निर्णय से बंधी हुई है, और वो पुराने निर्णय उसने ले लिए हैं अन्य कई केसेस में। और जहां तक राजनीतिज्ञ की बात है तो वो हेमंत सोरेन, जो कि वो भी चीफ मिनिस्टर थे, हेमंत सोरेन के केस में जो स्टैंड लिया उससे अलग नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट, उससे अलग नहीं जा सकती, वही सेम बेंच है, और वही उन्होंने के कविता वाले मैटर में किया। तो भाई प्रॉपर चैनल से जाओ ना यार, सीधे सीधे क्यों पहुंच जाते हो हमारे पास में। हमारे पास ऐसा कौन सा वो है कि साहब हम सारे लॉ को सबको इग्नोर करके तुमको स्पेशल प्रिविलेज दे देंगे। और आपको पता है कि कितनी बार से बेल के लिए तरस रहे हैं, पूरा केस कहां से शुरू हुआ था, जो केस है जो अब सामने आ रहा है, जो बता रहे हैं ईडी वाले, और किस तरह से समीर महुंद्रू और विजय नायर के बीच में जो फेस टाइम कॉल हुई थ्रू अरविंद केजरीवाल, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को कहा कि ये भाई हमारा बंदा है, और उसके बाद फिर समीर महेंद्रू का वो सारा का सारा डिटेल ईडी के पास आ गया। फिर उसके बाद लगातार अप्रूवर बनते गए, शरद रेड्डी अप्रूवर बने, वो पिल्लई थे वो अप्रूवर बने, इनके समीर महेंद्रू के जो सेकेंड थे वो राघव रेड्डी बन गए, मगुंटा राघव रेड्डी बन गए अप्रूवर। इधर इनके अरविंद थे, इनके प्राइवेट सेक्रेटरी मनीष सिसोदिया के, वो अप्रूवर बन गए। उधर संजय सिंह सर्वेश मिश्रा वाला मामला चल ही रहा है, और एक अप्रूवर और बन चुके हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा और एक अप्रूवर बना है। तो इतने सारे अप्रूवर बनने के बाद में क्या रह जाता है। ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। इस ओपन एंड शट केस में अगर कोई इनको रिलीफ एक्सपेक्टेड है तो भैया इनको ट्रायल एक्सपेडाइट कराना चाहिए, ट्रायल कोर्ट से ही इनको कोई रिलीफ मिलनी है तो मिल सकती है। बाकी अन्ना हजारे ने भी यार डिसोन कर दिया भाई साहब को, बड़ी अजीब बात होती है। देखिए अन्ना हजारे ने इनको डिसोन कर दिया ये कह के कि भाई ये बंदा वो है जो शराब के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था मेरे साथ और बाद में शराब पॉलिसी बनाने लगा, तो इसलिए जो भी इसके साथ हुआ है वो उचित ही हुआ है। अब अन्ना हजारे ने भी इनको डिसोन कर दिया। अन्ना हजारे के बाद कांग्रेस ने इनको ओन अप कर लिया। जी वही कांग्रेस जो इतना हल्ला मचा रही थी, जिसके लिए आज आप देख सकते हैं कि पूरे वीडियो चल रहे हैं सभी जगह पे कि माकन साहब ने, अजय माकन साहब ने इनके लिए क्या कहा था कि 100 करोड़ से अधिक जो है वो पैसा इन्होंने उगाहा है लिकर पॉलिसी से और उसको गोवा इलेक्शन में यूज किया। अभी ठीक है, दूसरी तरफ उधर भगवंत मान जी जो है वो लग गए, भगवंत मान जी जो हैं वो लग गए हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे पास सारे फैक्ट्स हैं, आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर देने में मैं आज सक्षम हूँ। तो भगवंत मान जी जो हैं वो अब हिसाब किताब ये करने में लग गए हैं कि भाई अब पार्टी अलग कर लो। बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि जो आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की ब्रांच है ना वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके और वो अपना एक अलग अस्तित्व बना लेगी और कहेगी कि साहब हम भगवंत आम आदमी पार्टी है, तरह की आम आदमी पार्टी है, रेड आम आदमी पार्टी है, ग्रीन है, कुछ है रेड ग्रीन ऑरेंज पता नहीं किसी तरह की भी आम आदमी पार्टी वो अलग से बनने वाली है। एक और बड़ी बात आ रही है, एक घोषणा ये हो रही है कि भाई केजरीवाल जी जो है वो जेल से सरकार चलाएंगे। अब जेल से सरकार चलाने के बारे में जहां तक कानून का प्रश्न है तो कानून उसमें कोई रोक नहीं लगाता, कानून तो रोक नहीं लगाता लेकिन जेल प्रशासन अवश्य रोक लगाता है, क्योंकि यदि आपको बाहर से सरकार चलानी है यानी जेल में रह के सरकार चलानी है तो जेल को प्रशासन को आपको मीटिंग्स की सुविधाएं देनी होंगी, आपके लिए कॉन्फ्रेंस रूम अपॉइंट करने होंगे, नहीं तो कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा तो देनी ही होगी। वो जेल प्रशासन देता नहीं लगता, क्योंकि इस प्रकार की सुविधा यदि आपको याद हो कि मांगी गई थी हमारे सत्येंद्र जैन जी के लिए भी, और सत्येंद्र जैन जी को भी वो सुविधा दी नहीं गई थी। सत्येंद्र जैन जो भी जो थे वो प्यासे रह गए थे इस मामले में। तो अब केजरीवाल जी जो हैं वो ये मीटिंग तो कर सकते हैं लेकिन इन्होंने गलती कर दी, अगर इन्होंने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को मंत्री पद से नहीं हटाया होता तो आज ये इनके पास अवसर था कि इनके पास पूरा कोरम होता जेल के अंदर और जेल के अंदर बैठ के ये अपनी सरकार चला सकते थे। अब इनके पास कोरम भी नहीं है, अब जेल में बैठ के सरकार भी नहीं चला सकते। भाई केजरीवाल का तो बहुत बुरा हश्र हुआ है और ये हश्र इतना बुरा होगा ये मेरे विचार से केजरीवाल को भी अनुमान नहीं होगा। वो बहुत एरोगेंस में थे, उनको लगता था कि जो उनके विदेशी मित्र हैं उनको लगता था कि उनकी जो डीप स्टेट है जो अमरीका में ब्रिटेन में उनकी पहुँच है वो उनको बचा लेगी। और मजे की बात सुनिए, अखिलेश बाबू, अकलेश कहते हैं कई लोग उनको, अकलेश बाबू ने जन क्रांति का आह्वान दे दिया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जन क्रांति होनी चाहिए, तो वो जन क्रांति वाली जो बात है ना वो भी सामने आ गई है। और अकलेश बाबू के एक सहयोगी हैं आईपी सिंह, वो जो है वो स्पोक्समैन है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन और अमरीका को इसमें आगे आके पहल करनी चाहिए। तो भाई अब आप देख लीजिए कि मामला कहाँ जा रहा है। हम आपसे क्या कह रहे थे कि भाई डीप स्टेट का इसमें इन्वॉल्वमेंट कहाँ है और डीप स्टेट के यहाँ पर कोई और नहीं बचा तो अकलेश बाबू और उनके जो सहयोगी हैं वो ही अब डीप स्टेट की ओर से गुहार लगा रहे हैं और रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं, जन क्रांति की बात कर रहे हैं, अमरीका और ब्रिटेन का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन होगा नहीं कुछ भी केजरीवाल जी, अब आप निश्चिंत रहिए। बहुत शांति से दिन गुजारिए और गीता रामायण पढ़िए, अपने मित्रों के साथ में मजे कीजिए, आपके मित्र आपको अच्छी कंपनी देंगे, इससे अच्छी कंपनी और कब दे सकते थे वो, और इस कंपनी को आप एंजॉय करें, इतना फ्री टाइम कहाँ मिलता है, आप वैसे भी बहुत परेशान थे, हर समय टेंशन में रहते थे, हर समय स्ट्रेस में रहते थे, आप यदि रहते खाली तो आपको हो सकता है चुनाव में जाना पड़ता, आपको हो सकता है कैंपेनिंग करनी पड़ती, हो सकता है आपको कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करनी पड़ती है, मतलब कांग्रेस जैसी ही पार्टी है जिसके लिए आप जो है वो इतना डिस्टेस्ट रखते थे, जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसके साथ उसके आप बैठ के और दिल्ली में आपको कैंपेन करना पड़ता, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो ये सारा जो आपके साथ दुविधा थी उसको पूरी तरह से ईडी ने समाप्त कर दिया। आप वहां बैठेंगे तो हो सकता है वहां पर आपको सीबीआई का भी संसर्ग मिल जाए, और सीबीआई के साथ भी कीजिएगा। चलिए जो भी है, एक प्रश्न आया वो ले लेता हूं। रोहन वर्मा जी कह रहे हैं, हाय सर, मेनी ओपिनियन पोल शोइंग बीजेपी टू लूज 6 लोकसभा सीट्स फ्रॉम राजस्थान, व्हाट डू यू थिंक? सर थोड़ा हो जाने दीजिए, वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे स्वयं के पोल ने 5 सीटें जो है वो पिछली बार दिखाई थी, ये हमारा अनुमान था कि 5 सीटें हो सकता है कि लूज कर जाए, लेकिन पोलिंग के बाद वो हमने 25 कर दी थी, तो लगता है कई बार, लेकिन मोदी फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।